नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं जद्वंदनं जच्छ्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यं भुंजानः कात्यायन अर्चन व्रत हे मन्ते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यं भुंजानः कात्यायन अर्चन व्रतम् आप्लुत्यां वशिका लिंद्या जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुर नृपशैकतिं गंधैर्माल्यैः सुरभिभिः बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवाल फल तंडुलैः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इति मन्त्रं जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिकः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भूयानन्दसुतः पतिः। उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैः अनोन्या बद्ध बाहवः। कृष्णमुच्चैर्जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वः। नद्यः कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजर्हुः सलिले मुदा। गलत छप गए, विजर्हुः है, ज में हर्ष उकार नहीं है, ह में विजर्हुः सलिले मुदा। पढ़िए।
हेमन्ते प्रथमे मासि व्रजकुमारिका मेरुर्भविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्।
हेमन्ते प्रथमे मासि
नन्दव्रजकुमारिका
हेरुर्हविष्यं भुञ्जाना
कात्यायन्यर्चनव्रतम्।
आप्लुत्यां वसि कालिन्द्या
जो भी श्लोक पढ़ने का मन करे पढ़िए, कोई क्रम जरूरी नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंते हेमंत ऋतु में प्रथमे मासी प्रथम महीने में मार्ग शीर्ष में नंद ब्रज कुमारी कहा नंद महाराज के ब्रज में रहने वाली कुमारियां चेरुह अनुष्ठान की हविष्यम भुंजानः नियमित आहार करते हुए कात्यायनी माता दुर्गा जी का अर्चना व्रत अर्चन रूप व्रत आप्लुत्य स्नान करके अम्भसी जल में कालिंद्या जमुना जी के जलांते जल के निकट तट पर चोदिते ऋणे सूर्य सारथी के उगने पर अथवा सूर्य के उगने पर सूर्य की लालिमा का उदय होने पर कृत्वा करके प्रतिकृति प्रतिमा देवी भगवान विष्णु की शक्ति दुर्गा देवी अनर्चुह आराधना की नृप हे महाराज परीक्षित सैकति बालुका मई गंधई ही विविध गंधों से अथवा सुगंधित माल्य ही पुष्पों से सुरभि ही सुगंधित बलि भी ही उपहारों से धूप दीप कही अगरबत्ती और दीपक आदि उच्च अवचय ही बड़े या छोटे चार और उपहार ही वस्त्राभूषणों से प्रवाल फल तंडुल ही कोमल कोमल पत्तों से फलों से और चावल से श्रीमद् भागवतम की कथा का क्रम एक बार यहां तक आया था इस स्थान पर। इस कथा को भी कहा गया था लेकिन अति संक्षेप में, इसीलिए यहां से प्रारंभ करने की इच्छा हुई। 22वें और 23वें अध्याय की कथा यहां पर पूरी की जाएगी। इस 22वें अध्याय में ब्रज के कुमारियों के द्वारा दुर्गा जी के पूजन की कथा है और उनके मनोरथ को भगवान ने पूरा किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अनेक बार संबोधन किए हैं इस प्रसंग में, अनेक बार संबोधन किए हैं तो उसका विशेष महत्व है। जैसे आप देखते हैं इसमें दूसरे श्लोक में हिंद्री पर संबोधन कर रहे हैं और भी कई बार नृप शब्द आया है दोनों अध्यायों में। अभी अभी वृंदावन में शरद काल की भगवान की लीला कही गई थी, वेणु गीत। शरद काल के बाद हेमंत काल आता है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु, और शिशिर के बाद वसंत, ग्रीष्म और प्रारी। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में ये छह ऋतुएं बहुत प्रसिद्ध हैं, दो दो महीने की। तो यह भी हमारे मन में इच्छा है कि शरद कालीन लीला वृंदावन में कहने का अवसर मिला था, तो अब हेमंतिक लीला कहनी चाहिए, हेमंत ऋतु में जो भगवान की लीला हुई थी। एवं वर्षा शरद क्रीड़ा उक्तवा क्रम प्राप्तम हेमंत काल क्रीड़ा मा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं इस प्रकार, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा और शरद काल की लीला का वर्णन किया, तो क्रम के अनुसार प्राप्त अब हेमंत काल लीला का वर्णन कर रहे हैं। हेमंत हेमंतिक लीला कहनी चाहिए, हेमंत ऋतु में जो भगवान की लीला हुई थी। एवं वर्षा शरद क्रीड़ा उक्तवा क्रम प्राप्तम हेमंत काल क्रीड़ा मा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं इस प्रकार, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा और शरद काल की लीला का वर्णन किया, तो क्रम के अनुसार प्राप्त अब हेमंत काल लीला का वर्णन कर रहे हैं। हेमंत इत्यादि ना ब्रजम इति अंतेना। इस प्रसंग के अंत में यह आया है कि गोप कुमारियां ब्रज में चली गई, तो वे कहते हैं हेमंत इति आदिना ब्रजम इति अंतेना। इस तरह से हेमंत लीला कह रहे हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, एवं प्रायो ब्रजांतरागतानां विविधानां पूर्वानुरागम शरद प्रसंगे वर्णित्वा हेमंत प्रसंगे कुमारीणां पूर्वानुराग प्रक्रिया माह हेमंत इत्यादिना ब्रजन इति अंतेन। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी पर सेम चीज लिखे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी शरद काल के वर्णन में जो विवाहिता ब्रजगोपियां थी, ब्रजगोपियां हैं, उनके कृष्णानुराग का वर्णन किए वेणु गीत में। अब ब्रज की कुमारियों का पूर्व अनुराग वर्णन कर रहे हैं, जो विवाहिता नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, वे लोग कृष्ण को किस तरह से पाना चाहती थी अपने पति के रूप में, और कृष्ण से किस तरह प्रेम करती थी, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें मनोजी जो राधा रानी का नाम आता है, राधा रानी चिरहरण में नहीं थी, ये कुमारियों का वर्णन किया जा रहा है। तो इस तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी महान सभा में भगवान की लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चना व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत में, हेमंत ऋतु में, और उसमें भी प्रथमे मासी प्रथम महीने में, दो महीने किसी ऋतु में होते हैं, तो हेमंत में भी पहला महीना है अगहन, जिसको संस्कृत में मार्ग शीर्ष कहते हैं, मार्ग शीर्ष। और यह महीना इतना महान है कि भगवान श्री कृष्ण बारहों महीने में इसी महीने को अपनी विभूति के रूप में गिनाए हैं। मासानम मार्ग शीर्ष हो, मैं मासों में मार्ग शीर्ष हूं, मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो इस समय जो हम लोग कथा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये तो मार्ग शीर्ष बीत चुका है, ये पौष का महीना चल रहा है, ये हेमंत का ही दूसरा महीना है। तो प्रथम महीने में, हेमंत के प्रथम महीने में नंद ब्रज कुमारिका हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम चेरु। हविष्यम भुंजाना सत्य कात्यायनी अर्चन व्रतम चेरु। नंद ब्रज कुमारिका, नंद महाराज के ब्रज में रहने वाली कुमारियां, छोटी छोटी बच्चियां ये व्रत की। ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चियां कोई भी 7 वर्ष से ऊपर की नहीं है, ये प्रसंग बता रहा है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी हमेशा कुमारिका कुमारिका शब्द देते गए। क प्रत्यय जो लगा है कुमारिका हो, उनके और बाल्य विवक्षा के लिए श्रीपा सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, उनके और बचपन के ही भाव को प्रकट करने के लिए। नंदस्य ब्रजे या कुमारिका है अथवा नंद गोप कुमारिका है इति पाठे नंदस्य ये गोप तेषां कुमारिका इति सैव अर्थ। हविष्यम भुंजाना नियमिता हारा सत्य कात्यायनी अर्चन व्रतम चेरु। नंदस्य गोपराजस्य ब्रजे या कुमारिका इति तेन साक्षात संबंध रहिता ताह गृहीता। यहां पर सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के अनुसार कि नंदस्य गोपराजस्य ब्रजे या कुमारिका, जो गोपों के राजा हैं नंद महाराज, उनके ब्रज में रहने वाली कुमारियां, इसके द्वारा यह ध्वनित किया जा रहा है कि नंद बाबा के जो साक्षात संबंधी थे और जो कुमारियां श्री कृष्ण से कोई भी दैहिक संबंध से जुड़ी थी वे इसमें परिहृत हैं, ये गुप्त कुमारियां नहीं थी। नंद बाबा से जिनका दूर का संबंध था उन गोपों की कुमारियां व्रत कर रही हैं। जैसे चाचा की कन्या या वो जो परिहृत किया गया जिनको छाटा जा रहा है, बड़े पिताजी की कन्या माने अपनी बहन या चाचा की कन्या अपनी बहन या किसी भी प्रकार का कोई संबंध था दैहिक, वे सब कन्याएं इसमें नहीं थी, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नंद ब्रज कुमारिका कहा गया, नंद महाराज के ब्रज में रहने वाली कुमारिका है। श्री कृष्ण पतित्वा योग्या, श्री कृष्ण उनके पति हो इसके जो अयोग्य थी वे इसमें गृहित नहीं है। और नंद ब्रज कुमारिका का एक अर्थ करते हैं नंदति हृष्यति, नंदति हृष्यति इति नंदो ब्रजो जाभ्यस्ता कुमारिका इति सर्वथा श्री भगवत परिग्रह योग्या इत्यर्थ। क प्रत्यय प्राय बाल्य विवक्षया, क प्रत्यय लास्ट में लगाया गया कुमारिका, तो क और कोमलता के अर्थ में उनके अतिशय बचपन को व्यक्त करने के लिए कहा गया। श्री भगवत विवाहापेक्षया पित्रान्यत्र विवाह विवाह असमत्या स्वयं ब्रजेशम प्रति लज्जया तत्प्रसंगकरणा। उन कुमारियों के पिता प्रायः चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह कृष्ण से हो, शुरू से ही उनका मनोरथ था, परंतु वे ब्रजेश से नंद बाबा से कभी कह नहीं पाते थे, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा थे, गोपराज थे। और ये छोटे छोटे गोप थे, उनकी अपेक्षा बहुत कम धनी थे, तो वे लोग ये कह नहीं पाते थे नंद बाबा से कि हम कृष्ण का, कि हम अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते हैं। तो श्री भगवत विवाह अपेक्षा पित्रा अन्यत्र विवाह सम्मत्या। और इसके साथ ये भी बात थी, नंद बाबा से तो नहीं कह पाते थे कि हम अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते हैं, लेकिन इस विवाह की अपेक्षा से मन में रख करके दूसरी जगह कोई चर्चा नहीं करते थे, विवाह की कोई चर्चा नहीं किए थे और नंद बाबा से भी नहीं किए थे। वास्तु का संचित परोहता पत्ते कुत्सितो मारह कामदेव सौंदर्य जभ्य श्लेषार्थे। और कुमारिका, कु का अर्थ है कि ये बच्चियां प्रौढ़ होने पर कुमार हो गए। कुमार का मतलब होता है कुत्सितो मारह कामदेव सौंदर्येण जाभ्य इति, जिनके सौंदर्य आदि से मार भी कुत्सित हो जाए। कामदेव भी फीका था, कुमार मार का अर्थ होता है कामदेव। तो ये सर्वथा भगवत प्रेयसी के योग्य हैं, ये सिद्ध करने के लिए बात कर रहे हैं। श्लेषार्थ से भगवान के प्रिया बनने के योग्य हैं। हविष्यम भुंजाना, ये बच्चियां जमुना जी के तट पर जाती थी, जमुना जी दूर है वहां से, जमुना जी के तट पर जाती थी, स्नान करती थी अघन के महीने में, और माता भद्रकाली की पूजा करती थी। किस लिए? कि ये जगत की ईश्वरी हैं, माँ हैं, ये हमारा विवाह कृष्ण से अवश्य करा देंगी, यह विश्वास करके माता दुर्गा की पूजा कर रही थी। खा क्या रही थी? श्रील सुखदेव गोस्वामी भोजन का वर्णन करते हैं, हविष्यम भुंजाना, हविष्य खाकर भजन कर रहे थे। देखिए श्रील प्रभुपाद जब प्रचार किए सारी दुनिया में, तो उन्होंने भोजन के विषय में जरूर प्राथमिकता दिया है, नो मीट ईटी, ऐसा कहा मांस नहीं खाना। ये तो खैर आदमी बनने के लिए है, परंतु जो लोग वैष्णव हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए तो और जरूरी है कि वे भगवान का प्रसाद ही खाएं। कई लोग ऐसा कहते हैं, दूसरे लोग बहिर्मुख लोग, कि भोजन और भजन से क्या मतलब है, भजन भोजन अपन चलने दो अपने ढंग से और भजन होता रहेगा, ये कैसे हो सकता है? भोजन का संबंध है भजन से। श्री गोप कुमारियां हविष्य खाती थी, हविष्य का अर्थ होता है जिसका हवन किया जा सकता है। अग्नि देवता एक देवता है, जैसे भगवान सूर्य है वैसे अग्नि देवता है, और अग्नि देवता समस्त देवताओं के और यहां तक कि भगवान के भी मुख माने जाते हैं। उनके उनमें कुछ हवन किया जाता है तो भगवान इसको ग्रहण करते हैं। तो जो अग्नि में हवन किया जा सके उसको हविष्य कहते हैं। एक पवित्र देवता को देने के लिए तो अग्नि देवता क्या खाते हैं? अग्नि देवता का मुख्य भोजन है घी, इसके बाद और भी जौ, तिल, गुड़, यही सब खाते हैं। हविष्य का अर्थ है कि श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि हविष्य का अर्थ है मुख्य रूप से घी और दूध, कोई कोई अन्न जो हेमंत ऋतु में उत्पन्न हुआ है नया नया, उसको बताते हैं। धान, शीत धान कहते हैं, चावल, चावल कभी कभी खा बना करके खाती थी। बहुत पवित्र हविष्य का ही अर्थ है, बहुत पवित्र भोजन सात्विक भोजन करके भजन करते थे। ये सिखाना जरूरी है संसार में कि यदि भगवान को पाना है तो एक विशेष प्रकार का भोजन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी खा करके पी करके और भजन करे और भगवान को पाएगा, ऐसी बात नहीं। अन्यथा भोजन के वर्णन की क्या जरूरत थी गोपियों की। जो लोग ऐसे ही अंट शंट प्याज लहसुन खाते रहते हैं मांस मदिरा, ये पापी लोग कभी भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान को पाने की बात तो दूर रही, स्वर्ग तक नहीं जा सकते। ध्यान रखना चाहिए, भगवान को पाने के लिए भगवान जैसा होना पड़ता है। तो श्री गोप कुमार यहाँ छोटी छोटी बच्चियां बहुत पवित्र आहार करती थी और नियमित थोड़ा आहार करती थी और माता दुर्गा जी का भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। हविष्यम हैमंतिक सिद्धान्यादि सहितम गव्यम दधि दुग्धादिकम। जी गोस्वामी पाली और सनातन गोस्वामी पाली। कात्यायनी परम वैष्णवी श्री शिव प्रिया पार्वती तस्या अर्चन व्रतम नियमम अर्चन रूपम व व्रतम तच्च मास मात्र समापनम इति केचिदाह। यह केवल एक महीने के लिए की थी, अथवा कुछ का विचार है कि और महीने में भी करती थी लेकिन एक महीने में विशेष रूप से की थी। पर शिल्पा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कुछ महानुभाव कहते हैं तच्च मास मात्र समापनम इति केचिदाह, केवल एक महीने की थी, अगहन के महीने। शिल्पा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, विवढ़ा नाम सरदी कृष्णान रागम वर्णयित्वा अव्यूढ़ा नाम अपि गोपी नाम तम अनुवर्णयन तासाम नित्य सिद्ध कृत कृष्ण प्रेयसी भावानामपि कृष्ण प्राप्ति कामनया लोक रीत्या एवं हेमंते देवी पूजा माह। यद्यपि ये बच्चियां भी भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, भगवान ने अवतार लिया है संसार में तो वे सब भी जहां तहां प्रकट हुई हैं, नित्य सिद्ध उनका भाव है, कृष्ण के नित्य प्रेसी हैं, फिर भी लोक रीति से कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वे देवी की पूजा कर रही हैं। प्रथमे मार्ग शीर्षे तासाम कृष्ण कांता नाम भेदत्रयमिदं श्री हरिवंश श्री विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण आदौ अपि दृष्टम ज्योतिर्गोप कन्या च रात्रि संकल्प कालवित इत्यादि भी। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रियाओं में मुख्य रूप से तीन भेद है जिसको हरिवंश और विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण आदि में कहा गया है। तो ये ज्योति नहीं है, ये कुमारिया है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पर श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग है, इतना लुब्ध है, इतना आकर्षण है कि उनको पति रूप में पाने की इनको कामना होने लगी और इसलिए इतना बड़ा इतनी बड़ी तपस्या इतना बड़ा व्रत कर रही है। प्रभु कहे कृष्ण धन, प्रभु कहे सनातन कृष्ण से रतन धन अनेक जतने से मिला। कृष्ण एक ऐसे रत्न है जो बहुत यत्न करने से मिलते हैं। वास्तव में ये जो प्रसंग है गोप कुमारियों का, इससे भक्तों को उत्साह मिलता है और कृष्ण के लिए व्रत उपवास जप जो भी है करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जो छोटी छोटी बच्चियां कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इस प्रकार का व्रत कर सकती हैं, जाड़े के शीतल जल में स्नान करना, जप करना, देवी की पूजा करना, असली बात है कि उनका मन कृष्ण ने खींच लिया था पूरी तरह से। तो कृष्ण को पाने के लिए चाहे जो भी तपस्या उठानी पड़े, जो भी कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए तैयार थे। और समाज कोई नहीं उनको कहा था कि तुम पूजा करो ये करो, लेकिन कृष्ण के प्रति जो व्यक्तिगत उनका राग था वह व्रत करने के लिए बाध्य किया था, व्रत कर रहे थे। कात्यायनी अर्चना व्रतम चेर। श्रीहरि श्री जी लिखते हैं कि देवो वा देवी वा पूज्य कतमोपि न तत्र विशेषम फलम एकम इस पाद प्रसाद एवेति सर्वतो ध्येय। इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि पूजा आप किसी की भी कीजिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, किसी की भी की जा सकती है। देवता हो या देवी हो वो पूज्य है, पर फलम एकम इस प्रसाद, फल यही चाहना चाहिए कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, बाकी किसी की भी पूजा करें। फल कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण हमें मिले, इसके लिए चाहे कोई भी देवी हो देवता हो पूजा की जाती है। तो श्री गोप कुमारियां कृष्ण को पाने के लिए देवी जी की पूजा कर रही है। तो एक प्रश्न होगा कि ठीक है तब देवी पूजा तो कर रही हैं, देवताओं का क्यों तिरस्कार की, देवताओं की क्यों नहीं पूजा की। एक से एक बड़े देवता हैं, जैसे भगवान शिव हैं, नारायण हैं, इनकी पूजा क्यों नहीं की है, क्यों देवी की पूजा कर रही। तो इस पर बिहारी सूर्य जी कहते हैं भव्य प्रदा ही बहवो भुवि संति यद्य आप्तास्तथापि कतमो पिनमा त्रितुल्य जानंत इत्थम अपरान पहाय देवान आनर्चो इष्ट वरदान जन्मातरम। वह ऐसा लगता है हरिश्वर जी कहते हैं कि इस संसार में देखा जाता है कि भव्य प्रदा ही बहव, इस संसार में बहुत से अपने संबंधी हैं और बड़े बड़े देवता भी हैं, खासकर संबंधियों में भव्य प्रदा ही बहव, बहुत बहुत लोग हैं जो बहुत देते हैं किसी को, लेकिन विचार करके देखा जाए तो कोई भी माँ के समान नहीं है किसी को देने में, और वो भी कन्या के लिए, बच्ची के लिए जितनी चिंता माँ करती है और उसको अच्छे घर में चाहती है कि जाए, इसका विवाह हो, सुखी रहे, तो माँ जितना प्रेम करती है उतना कोई नहीं करता, चाहे बच्ची के लिए चाहे किसी के लिए भी। व्याप्ता आपता तथापि कतमो पिन मातृतुल्य, कोई भी है लेकिन माँ के समान नहीं है। इस बात को जान करके गोप कुमारियों ने ये सोचा कि माँ की ही पैरवी करनी चाहिए, माँ की ही पूजा करनी चाहिए, उनको कृष्ण को पाना था, इसलिए वो अन्य देवताओं की परवाह नहीं की, माँ की ही पूजा। जानंत इत्थम अपरान अपहाय देवान आनर्च इष्ट वरदान जन्मातरम। इष्ट वरदान जो अपनी इच्छा के अनुसार वर देती हैं, ऐसे माता दुर्गा की ही पूजा किया, माँ की ही पूजा किया, ये स्वाभाविक उत्प्रेक्षा है वास्तव में। क्यों माँ की पूजा किया देवताओं को छोड़कर। तो ये तो संसार में सर्वत्र देखा जाता है, विशेष करके भारतवर्ष में हम लोगों का अनुभव है कि वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए माँ के समान वरद कोई नहीं होता है। तो इसलिए वे भद्रकाली की पूजा कर रही। हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण को पाने की ऐसी अदम्य लालसा है उनके मन में, इसके लिए माँ से निहोरा कर रहे, पूजा कर रहे। हरिश्वर जी कहते हैं कि पूजा किसी की भी की जा सकती है, पर उद्देश्य यही होना चाहिए कि कृष्ण हमको मिले, कृष्ण प्रसन्न हो। तो पूजा का क्या प्रकार था उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं आप्लुत्याम् भसिकालिन्द्या जलान्ते चोदिते नुणे कृत्वा प्रतिकृतिम् देवीम् आनर्चुर् निर्पशयकतिम्। तासाम् तादृशीम् अनुराग चेष्टाम् दर्शयन् तच्चिकीर्षुन् जनानपि बोधयन् तत्प्रकारमेव आह आप्लुत्या इति। श्रीपा सनातन गोस्वामी जी उपक्रम में लिखते हैं कि गोप कुमारियों की अनुराग चेष्टा जैसी थी उसको दिखाते हुए, और इसको करने के इच्छुक अगर दूसरे लोग हों तो उनको भी सिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी इस पूजा का प्रकार बता रहे हैं। गोप कुमारियों को दुर्गा जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण मिल गए तो अन्य भक्तों को भी इच्छा होगी जरूर कि कैसी पूजा है, क्या है, मैं भी करूंगा तो कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए उन भक्तों को भी एक प्रकार से सिखाने के लिए इस पूजा विधि का वर्णन कर रहे हैं। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, अरुणे उदिते सूर्य सारथौ उदयम प्राप्ते सती। सूर्य सारथी के उदय होने पर, सूर्य भगवान के उगने से पहले जो उनका एक लाल लाल प्रकाश उदित होता है भोर में ही, तो उसको उनके सारथी का प्रकाश कहते हैं। सूर्य पीछे रहते हैं, सारथी आगे रहते हैं, उनका नाम भी अरुण है। वास्तव में भगवान सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और वो अजीब ढंग के हैं। वो पूरे दोनों शरीर, दोनों पैर से लंगड़े हैं सारथी, रथ चलाते हैं। रथ चलाने में तो पैर की कोई खास जरूरत है नहीं, और सूर्य की तरफ दृष्टि रखते हैं। आगे रथ चलाते हैं तो आगे दृष्टि नहीं रखते हैं, भगवान सूर्य की तरफ देखते रहते और रथ चलाते हैं। उनको अरुण कहते हैं, अथवा अरुण का अर्थ होता है अरुणिमा। सूर्योदय से पहले ललाई जो आकाश में फैलती है उसको अरुणिमा कहते हैं। इसका अर्थ है कि बिल्कुल भोर में अरुणे उदिते कालिंद्या अंभसी आप्लुत्य, सूर्य के उगने से पहले श्री जमुना जी के जल में आप्लुत्य स्नान करके जलांते कालिंद्या एवं जलस्य अंते अद्यापि घट वासिनी देवी नामना प्रसिद्ध ब्रज घटे। श्रीपा सनातन गोस्वामी कहते आज भी वह स्थान है जिसको वहां की देवी को घट वासिनी देवी कहते हैं। घट का अर्थ घाट, घाट वासिनी या घट वासिनी देवी उस ब्रज घट पर आज भी हैं, प्रसिद्ध हैं, वहीं पर पूजा करती थी। तो अब वो देवी नहीं है लेकिन उसी स्मृति में देवी रखा गया है। जलांते जमुना जी के जल के निकट सैकतिम प्रतिकृतिम कृत्वा सिकता से सैकती, सैकती कहते हैं सैकती, बालुका मई प्रतिमा कृत्वा बना करके, बना करके और स्थापना करके। वो एक ही दिन में बिगड़ भी जाता था, बालू की प्रतिमा तो रुकेगी नहीं, अगर सूखेगी और हवा भी लगेगा तो भर 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 गिर जाएगा। लेकिन वो रोज रोज बनाती थी। कई गोप कुमारियां थी तो बालू, आप तो जानते हैं कि सूखी बालू में भी अगर पानी डाला जाए तो थोड़े देर के लिए वो ठोस हो जाता है। तो जलांते वो जल के निकट ही बना रही थी, इसीलिए प्रतिमा बनाने में सुविधा हो और स्नान भी वहां करना था। तो कोई तुरंत शेर बना देती थी, शेरा वाली माँ, और कोई कुछ, कोई त्रिशूल, कोई कुछ ऐसे बना करके इसके पूजा करती थी, बनाती थी और स्थापना भी करती थी। सैकतिम प्रतिकृतिम कृत्वा सुरभि भी ही, दोनों श्लोकों का अनुवाद है। तो पूजा करती थी माता दुर्गा की, कैसे करती थी, सुरभि भी गंध माल्य ही, सुरभि भी, सुरभि ये सभी चीज का विशेषण है, सुगंधित गंधों से, माल्यों से, पुष्पों से, बलि भी, वस्त्र भूषणादि उपहार है, उनमें भी कोई सुगंध होगी, कुछ न कुछ सेंट लगा होगा, जो भी होगा, तो उनके लिए भी सुरभि भी शब्द का प्रयोग है। अथवा बलि भी, बलि भी कहते हैं कि माता दुर्गा जी के लिए घर पर से बना करके भोग ले जाती थी प्रसाद, जैसे हलवा चाहे कोई चीज, तो सुरभि भी वो सुगंधित था, बहुत सुवास आती थी, स्वाद तो उसमें था ही और सुगंध भी। उच्चा वचैश्च उपहार है, और उत्तम मध्यम अन्य भी प्रकार के उपहार दुर्गा जी को चढ़ाती थी, वो दिन में ही वो रख लेती थी, रात में संजो करके रखती थी और सवेरे ले जाकर पूजा करती थी। प्रवाल फल तंडुल, वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों से, फलों से और अक्षत से, चावल आदि से देवी अनर्चु पूजया मासु, माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे इन इन वस्तुओं से। गंधे माल्य सूर्य भीर बलभीर धूप दीप कही, उच्चा वचैश चोपहार ही प्रवाल फल तंडुल, आपलुत्य इति परम पावन शीतल जले विवस्त्रतया निमज्ज स्नात्वा इत्यर्थ। आगे श्लोक आएगा उसे समझ लेना चाहिए कि ये जमुना जी के तट पर जाती थी और कृष्ण के गान के आवेश में रहती थी, भगवान कृष्ण के गान में कीर्तन में इतना आनंद आता था कि गान करते हुए और वस्त्रों को जमुना जी के तट पर फेंक करके जाती थी, रह करके नहीं, ऐसा वर्णन आया है आगे। विवस्त्रतया निमज्ज स्नात्वा इत्यर्थ, नग्न स्नान करती थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, कोई स्पेयर कपड़ा नहीं ले जाती थी, तो वहां स्नान करके, स्नान करके वस्त्र पहन करके इसके बाद माँ की पूजा करती थी। अनेन जलांत इत्यादि ना अपि व्रते कृष्णम दर्शितम, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं जल के निकट पूजा कर रही थी, तो इससे और व्रत की कठिनाई का वर्णन किया जा रहा है। एक तो ठंडा का महीना और दूसरे पानी के पास। कालिंद्या इत्यस्य पूर्वा पराभ्याम अन्वय अरुणे उदिते सार्थौ सूर्य व उदिते सतीति व्रतापेक्षया ततः प्रागेव प्लवनम गेयम। व्रत की अपेक्षा से कि हमारा व्रत अच्छी तरह से पूरा हो, और खास करके प्लवनम स्नान जो करती थी निर्वस्त्र, उसके लिए ये सूर्य के और अरुण के उगने से पहले ही चली जाती थी, ऐसा समझना चाहिए। सैकतिम बालुका माइन प्रतिकृति प्रतिमा कृतवा इति अचिरात कामित विशेष संसिद्ध है। शीघ्र ही हमारे हमारी अभिलाषा पूरी हो, इसके लिए माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर पूजा करती थी। तो पूजा तो ऐसे भी की जा सकती है, आदमी मन से या जहां तहां संकल्प करके करे, पर मूर्ति बना करके क्यों पूजा करती थी? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अचिरात कामित विशेष संसिद्ध है, शीघ्र ही हमारी कामना पूरी हो, इसके लिए मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे। इसे सिद्ध हुआ कि भगवान की या देवताओं की भी पूजा यदि उनकी प्रतिमा की जाए तो विशेष लाभदायक, अन्यथा आज के दुनिया में तो बस सभी ब्रह्मवादी हो गए और सब जगह भगवान व्यापक है, कुछ नहीं करते, कुछ क्रिया में आना चाहिए ना भजन। प्रतिमा होती है तो आदमी प्रतिमा का श्रृंगार करता है, भोग लगाता है, करता है, करता है, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं, अचिरात कामित विशेष संसिद्ध है, पूजा कर रहे थे। हे नृप इति, यहां संबोधन कर रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, जगत पूज्याभिरपि ताभि श्री कृष्णार्थम सायपि तथार्चत इति वैयग्र महात्म्यम अहो पश्यत इति भाव। श्री गोप कुमारियां जगत पूज्या हैं, श्री दुर्गा जी गंगा जी आदि की द्वारा भी वो पूज्य हैं, फिर भी कृष्ण प्राप्ति के लिए उनकी पूजा कर रही हैं जिनके द्वारा वे स्वयं पूज्य हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं। तो हे महाराज परीक्षित, वैयग्र महात्म्य देखो, महात्म्य मतलब बड़ा ही, चाहे कितनी व्यग्र है कृष्ण को पाने के लिए कि उस दशा में अब दुर्गा जी की भी पूजा करने लगी, जबकि दुर्गा जी उन्हीं की पूजा करती हैं, वे स्वयं उनकी आराध्या हैं, चूंकि भगवान की प्रेयसी होने से वो माता दुर्गा जी की भी पूज्य है, फिर भी व्यग्रता ऐसी है कृष्ण को पति रूप में पाने की दुर्गा जी की पूजा कर रही। नृप संबोधन के पीछे यह उद्देश्य है। सुरभि भी रीति जथापेक्षम सर्वेरपि योज्यम, जथापेक्ष सब जगह लगाना चाहिए, सभी सुगंधित है, बहुत्वम गंधादि बाहुल्या बल भी वस्त्र भूषण नैवेद्य आदि उपचार है, ताने वह प्रवा लेती अत्र क्रम भंग। एक इस श्लोक पर आप ध्यान दीजिए, तीसरे पर, सुरभि भी गंधर माल्य सुरभिर बलभीर धूप दीप कही उच्चा वचैश चोपहार प्रवाल फल पांडुल। इसमें जो भगवान के पूजा दुर्गा जी की पूजा का क्रम है वो भंग है, कुछ नियम है कि किस वस्तु के बाद कौन वस्तु देनी चाहिए, इसके बाद ये देनी चाहिए, इसके बाद ये देनी चाहिए, इसके बाद ये देनी चाहिए, लेकिन इसमें क्रम भंग है। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि क्रम भंग श्री कृष्ण हृत मनस्त्वेन तासाम क्रम विस्मृत है, श्री बादरायणे एव वा तद्व्रत कथने परम परम सुखेन कर्मातिक्रमात्। क्रम भंग क्यों है, क्योंकि सुरभि गंध माल्य आदि ये सब उपहार के बाद दिया जाता है। देखे भगवान की पूजा में पहले भोग लगा लेते हैं उनको, उसके बाद तब आरती करते हैं, ये सब देते हैं, इसमें क्रम भंग है। प्रवाल फल तंडुल, प्रवाल और फल एक साथ नहीं दिया था, प्रवाल जो है वो श्रृंगार के लिए दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, और फल है वो नैवेद्य है, भोजन है। बल भी धूप दीप कही कई कई क्रम भंग है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण हृत मनस्त्वेन तासाम क्रम विस्मृत, श्री कृष्ण में मन लगा हुआ है, पूजा दुर्गा जी की कर रही है लेकिन मन कृष्ण में लगा हुआ है, तो कृष्ण में इतना मन आसक्त है कि उस कारण से ये पूजा के क्रम की विस्मृति हो रही है। अथवा श्रील सुखदेव गोस्वामी जो उनके कृष्णानुरागमय व्रत को कह रहे हैं, तो कहने में परम उत्सुकता के कारण वे क्रम का विस्मरण कर गए हैं कहने में। दोनों में एक अर्थ हो सकता है कि गोपियां श्री कृष्ण मन आविष्ट चित्त के कारण क्रम भूल गई हैं, अथवा सुखदेव गोस्वामी ही कहने में क्रम भूल गए। गोपियों के गोप कुमारियों के व्रत का जब कथन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वे भी बहुत आविष्ट हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण प्राप्ति के लिए ऐसा व्रत किया जाए, तो उस आवेश में क्रम भंग कर गए। इसके साथ ये तो पूजा कर रही थी, और पूजा के साथ साथ माता दुर्गा जी को, दुर्गा जी से अपने मन का भाव निवेदन कर रही है, उनके गुणों को गाते हुए। सभी गोप कुमारियां एक स्वर से करती जाती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई चीज अर्पण करते समय वो ये नहीं बोल पाती थी कि हे देवी इदम गृहाणा, ये लीजिए ये लीजिए, बस कोई चीज अर्पण कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी तो यही मंत्र बोल रहे थे, कात्यायनी महामाये महायोगी। सभी गोप कुमारियां एक स्वर से करती जाती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई चीज अर्पण करते समय वो ये नहीं बोल पाती थी कि हे देवी इदम गृहाणा, ये लीजिए ये लीजिए, बस कोई चीज अर्पण कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी तो यही मंत्र बोल रहे थे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। ऊपर के जो दो लाइन है यह है मूल श्लोक, जिसमें आधे श्लोक में माता दुर्गा जी के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, और आधे में अपना मनोरथ व्यक्त कर रही हैं। फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः, ये मंत्र जप रही थी। कात्यायनी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी और हे देवी, इतना माँ से निहोरा कर रही हूं। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भगवतो महाशक्ति रूपे, महायोगिनी, हे दुर्घट घटना समर्थे, अधीश्वरी, हे सर्वकर्त्री देवी, हे क्रीड़ा रसाभिज्ञ, नंद गोप सुतम मे पतिम कुरु ते नमः। नंद महाराज के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए, ते नमः, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ते नमः अस्तु इति शेषा ता है इति मंत्रम जपन्त्यः, वे गोप कुमारियां यही मंत्र जपते हुए पूजन चक्र माता दुर्गा जी की पूजा कर रही है। महामाय शब्द से तत्पर हे महामाया, श्री भगवत सचिदानंद शक्ति रूपे इति, श्री कृष्ण प्राप्ति योग्यम अस्माकम अपि, श्री कृष्ण प्राप्ति योग्यम अस्माकम अपि सर्व शक्तिम दातुम समर्था असी इति अर्थ। महामाया, माता दुर्गा जी महामाया है, तो महा महा का अर्थ है बहुत बड़ी शक्ति, माया का अर्थ शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। तो श्री कृष्ण प्राप्ति के योग्य शक्ति हमको आप दे सकती हैं, अर्थात हमें भी आप समर्थ बनाइए, आप स्वयं सर्व समर्था हैं, ऐसी हमें शक्ति दीजिए कि हम श्री कृष्ण की गृहिणी हो जाएं, श्री कृष्ण की पत्नी हो जाएं, हमारे पति हो जाएं। तो मान लीजिए अगर माता दुर्गा जी कहें कि ननौ असौ अत्र पत्नी अनपेक्ष, अभी तो ये श्री कृष्ण पत्नी की कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, कभी कोई चर्चा करते हैं या इनकी कुछ अभिलाषा व्यक्त होती कि ये विवाह करना चाहते हैं, पत्नी करना चाहते हैं, तो मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन अभी तो असौ अत्र, अत्र माने अस्मिन समय, असौ ये श्री कृष्ण पत्नी अनपेक्ष, ये पत्नी अनपेक्ष है। तब कहती हे महायोगिनी, योग माने उपाय जानने वाली, हे महा उपाय जानने वाली, दुर्घटम अपि त्वया सुघटितुम सुघटितुम शक्यता इत्यर्थ सुघटितुम शक्य महाजोगिनी का ये अर्थ है जो कार्य नहीं होने वाला है असंभव है उसको भी संभव करने की तुम्हें शक्ति है। श्री कृष्ण के हृदय में अभी नहीं है कि वे पत्नी प्राप्त करें उनको सोचते भी नहीं है लेकिन उनके मन में हे माँ तुम इच्छा भर सकती हो वे पत्नी की अपेक्षा कर सकते हैं। ननु महालक्ष्मी तो विभेनी यदि दुर्गा जी कहें गोप कुमारियों से कि मैं लक्ष्मी जी से बहुत डरती हूं महालक्ष्मी से या लक्ष्मी से क्यों डरती हैं कि अगर मैं कृष्ण को तुम्हारा पति बना देती हूं तो लक्ष्मी जी हमको डांटेंगी चाहे मारेंगी कि हमारे पति को गोप कुमारियों का पति क्यों बनाया तुमने तो मैं कर सकती हूँ मान लीजिएगा दुर्गा जी को है मैं कर सकती हूँ लेकिन महालक्ष्मी जी से बहुत डरती हूँ मैं। तब कहती है हे अधीश्वरी अशेष ऐश्वर्य संपन्नत्वात् त्वं ततोप्यधिकतरा निर्भया असि इत्यर्थ हे माता दुर्गा जी आप तो अशेष ऐश्वर्य से संपन्न है इसीलिए आप लक्ष्मी से भी निर्भय हैं लक्ष्मी क्या करेंगी आपका ये निर्भय है तो जो शेर पर ही चढ़ी रहती है हाथ में त्रिशूल ले रहती है उसका क्या भय है निर्भय है दुर्गा जी निर्भया आसीत इत्यर्थ ननु तरहि जुयम तमेवाराध्यत इति चेत् तत्र दुर्गा जी कहें कि तो अब स्वयं ही कृष्ण से क्यों नहीं कहती हो स्वयं उनकी आराधना करो उनको खुश करो कि मुझे लक्ष्मी के पति हैं तो इस पर गोप कुमारिया कहते हे देवी हे तदेक भक्त्या द्योतमाना इत्यर्थ देव का अर्थ चमकना देवी माने चमकने वाली आप विष्णु की भक्ति से ही द्योतमान हैं आप उनकी शक्ति हैं इसका अर्थ है कि तत्साक्षाद अर्चना दपि तत्प्रियतम जनाराधनम एवं वरम इति भाव ने सुना है माँ कि भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ आराधना है उनके प्रिय जनों की आराधना तो आप विष्णु की शक्ति हैं तो आपकी आराधना श्रेष्ठ है भगवान की आराधना से भी आपकी आराधना से भगवान प्रसन्न होंगे भगवान अपने भक्तों की आराधना से अधिक प्रसन्न होते हैं ये बात और नंदश्चय असौ गोपश्चैति तस्य सुतम कुमारम इति गोप कन्या नाम तत्पत्नित्व योग्यता अस्ति इति सूचितम् नंद गोप करें ये नंद हैं राजा और गोप हैं नंद हैं नंदश्चय असौ गोपश्चैति नंद गोप और तस्य सुतम आप नंद के पुत्र हैं नंद गोप के पुत्र हैं तो गोप के पुत्र हैं तो आप गोप 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 कुमार हुए और हम हैं गोपी अतः आप के पत्नी बनने की योग्यता हम में है हम एक ही जाति के हैं यह भाव है तो माता दुर्गा को भी माता दुर्गा जी को मतलब ये कह रही हैं कि हे माँ अगर तुम हमारा विवाह रचाओगी तो इसमें भी कोई सामाजिक अड़चन नहीं है नंद बाबा गोप हैं और हम भी गोपी हैं तो हम उनके पत्नी बनने के योग्य हैं कोई बहुत अंतर्जातीय विवाह आदि कराने की जरूरत नहीं है बहुत झंझट नहीं है इसमें बिल्कुल ठीक है नंद गोप शब्द से व्यक्त कर नंद गोप सुतम पति मे कुरुते नमः जदवा गोपो भूप गो का अर्थ होता है पृथ्वी प माने पालन करने वाला भूप अस्माकम राजा इति अर्थ इति तस्य सुदुर्लभ सुदुर्लभता सूचिता तथापि पतिम स्वामिनम कुरु तत्र शक्तिरुदिष्टैव यद्यपि ये दुर्लभ हैं राजा के पुत्र हैं फिर भी आप इस दुर्घट स्थिति को सुघट कर सकती है। यदा नंदस्य गोपसुतम इति तस्य गोपवेश क्रीड़ा गोपीना मनोहरतया पतितेन प्रार्थनया कारण। अथवा नंद गोपसुतम का एक अभी अर्थ है कि गोप वेश में जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा है हम गोपियों के लिए परम मनोहर है, यही पतित्व में प्रार्थना का कारण। हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनको हमारा पति बना दीजिए। तथा सदैव तादृशत्व प्रकटनम अप्यभीष्टम में मम इति सपन्न भयन तत् परिहारार्थम प्रत्येकम सर्वा एव स्वचित्तांत प्रार्थयन्त्य इति उह्यम। तो प्रार्थना में मंत्र में हम वयम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मे का अर्थ है मम, मेरा पति बना दीजिए। प्रत्येक कुमारी अपने मन में इसी भाव को रह करके बोल रही है, अतः इसमें इनमें कोई शपथ में भाव भी नहीं है। प्रत्येक इसी मंत्र को बोल रहे हैं, एक वचन में मंत्र है लेकिन सब बोल रहे हैं। जुड़ा महामुनि श्री नारदादि दृष्टो एवं प्राचीनो मंत्र। अथवा ये मंत्र कोई गोपी का बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से ही अनादिकाल से मंत्र है जिसको श्री नारद जी आदि ने कहा है, तो इसको वे जप रहे हैं। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, हे कात्यायनी नंद गोप सुतम में पतिम कुरु ननु कुरु इति अनेन मई एव किमिति। तो मान लीजिए माता दुर्गा जी कहें कि कुरु कर दो, तो मुझसे ही इतना दुराग्रह क्यों कर रही हो, मुझसे इतना हट क्यों कर रही हो? जो होने वाला होगा विवाह कृष्ण के साथ तो हो जाएगा, लेकिन हम ही करें कृष्ण को पति बना दे ऐसा क्यों आग्रह कर रही हो? तत्र स्वातंत्र्यम अर्प्यते अहम तु तदर्थम तत्पितरु प्रेरयिष्यामि मात्र तस्मात् कारय इति देहि इति वा प्रयुज्यता भी संख्या सर्व वैकल्प्यम आह। माता दुर्गा जी कहते हैं कि देखो हमसे क्यों आग्रह करती हो, मैं इतना कर सकती हूं कि तुम्हारे माता पिता को प्रेरित कर सकती हूं, तुम्हारे माता पिता को प्रेरित कर सकती हूं कि वे विवाह की बात करें कृष्ण से, तुमको अर्पित करें। इसलिए कार्य ऐसा कह सकती हो कि करा दीजिए कार्य या देही इतिवा प्रयुज्यत, ये आशंका करके इतनी व्यग्र है गोप कुमारियां कि नहीं बात तुम ही कर दो, तुम ही कर दो। तो उनके अनेक वैकल्पिक सामर्थ्य को व्यक्त कर रही है। कहते हे महायोगिनी इति तेना संजोगस त्वया एवं शीघ्रम संपाद्यो। श्याम सुंदर के साथ हमारा संजोग, ऐसा संजोग पत्नी और पति बनने का संजोग तुम शीघ्र संपादित करो, न तो पित्रादि व्यवधाने व्यवधानों पर द्रवेण प्रमुद कंठिता भी रश्मा भी काल विलंबा सयत्वा। इतनी व्यग्र है कि काल विलंब नहीं चाहते हैं। जब माता दुर्गा जी ने कहा कि मैं करा दूंगी, ऐसा कहो करा दीजिए, तब इतनी उत्कंठिता है कि नहीं नहीं काल विलंब हमारे लिए असह है, इसलिए माँ तुम में अद्भुत शक्ति है, महायोग है, महा उपाय है, तुम ही करा दो शीघ्र, माता पिता के व्यवधान पर मत छोड़ो, नहीं तो उपद्रव हो जाता है। पित्रादि व्यवधानों पद्रवेण न कृष्णस्य संप्रति अनुपनीतत्वेन विवाह योग्यत्वात्। तो माता दुर्गा जी ने कहा कि अभी तो श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, तो विवाह के तो बिल्कुल अयोग्य है, छोटे उम्र के हैं, किसी विवाह के अयोग्य हैं। तब कहते हे देवी, मुख्यम विवाहम विनैव केवल गांधर्व विवाहे नैव मे पतिम कुरु। यदि मुख्य विवाह नहीं होता है तो फिर भी गांधर्व विवाह करा दीजिए, किस तरह से किसी तरह से कृष्ण मानने लगे कि ये हमारी पत्नी है और हम तो मानते ही हैं कि हमारी पत्नी है, और ये संसार में हल्ला हो जाए कि कृष्ण की प्रिया है, कभी किसी तरह से करा दीजिए। इतना भगवान के प्रति अनुराग है, लालसा है, ये कह रही हूं मैं पतिम कुरु इत्यर्थ अधीश्वरीति तत्र तव किमपि अशक्यम नास्तिति भाव। अधीश्वरी हे सर्वेश्वरी, इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, हे माँ तुम सब कुछ कर सकती हो। ननु तव कृष्ण पति भावस्य त्वत् पितृभ्याम अज्ञातत्व तद अभिष्ठ कृष्ण प्रसंग कथम साधु सेत्सति। कृष्ण के प्रति पति भाव तुम्हारे माता पिता को पता नहीं है, तो बिना माता पिता को जनाए उनके जाने बिना तुम्हारा अभिष्ट कैसे पूरा होगा। मान लीजिए माता दुर्गा जी कहा, तब कहती हूं महामाये माया मत पितरु तथा मोहय जथा कदाचिदपि गोपांतरेण मद विवाह ताभ्याम न भाव्यते। हे माँ, आप हमारे माता पिता को ऐसे मोह में डालिए कि किसी दूसरे गोप से हमारे विवाह की बात न चला पावे, वो लोग कभी भूल कर भी कृष्ण के साथ हमारा विवाह होना चाहिए, दूसरे के साथ मेरे माता पिता के मन बात न आवे, ऐसे मोह में डालिए उनको। महामाया शब्द से माया का अर्थ मोहिनी शक्ति। कृष्णांग संग रहस्यम च न च ज्ञातुं शक्यते। हम कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण के साथ रहते हैं, ये भी उनको पता न चले और दूसरे गोप से हमारे विवाह की बात भी न कर पा रहे लोग। ठीक है, इतना तो कर सकती है ना। जत्वा दिव्यति क्रीड़ति देवयति क्रीड़या तिथि व देवी स चाशु पतिश्चैति ताम तादृशम पति त्वम विवाहम विनैव सिद्धता दति मम गोपांतर व्यूढ़त्वे पिन्न कापि क्षतिरिति भाव। अथवा हे माँ, यदि हमारा विवाह लोक दृष्टि से हो भी जाता है किसी गोप से तो इससे कोई क्षति नहीं होगी। तम तादृशम पतित्वम विवाहम विनय, लेकिन कृष्ण हमारे पति हैं, यह तुम कर दो, तुम्हारे द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, दुनिया जाने या न जाने। ये परकिया भाव की बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कर रहे हैं, तुम पति बना दो कृष्ण को हमारा, और दुनिया समझे या न समझे कोई क्षति की बात नहीं, तुम इसको ठीक कर दो। कि माँ दुर्गा तो जानेगी कि ये कृष्ण की प्रेयसी है, कृष्ण पति है, तो बस इतना ही काफी है। अगर अगर दूसरे के साथ विवाह होता भी है तो विवाह होने दो, लेकिन पति हमारे कृष्ण है, ऐसा करो। यही मंत्र जपती रहती थी जितना देर पूजा चलती थी। इति मंत्रम जपंत्यस्तः पूजा चक्रु कुमारी का। ये कुमारियां माता दुर्गा जी की पूजा कर रही थी और मंत्र जप रही थी कृष्ण प्राप्ति का, और मन में केवल कृष्ण उदित रहते थे, कृष्ण चेत सह। आगे भी बात आएगी। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेत सह भद्रकालीं समानर्चुर भूयानन्द सुतः पतिः। कृष्ण चेतसः कृष्णे चेतः जासां ताः कुमार्यः एवं मासं व्याप्य व्रतं चेरु नन्द सुतः पतिं पतिः भूयात् इति संकल्प च भद्रकालीं समानर्चुर पूजयामास। इस प्रकार एक महीने तक गोप कुमारियों ने पूजा किया। ये नहीं समझना चाहिए कि एक महीने का ही संकल्प लेकर के बैठी थी, नहीं, अब वो तो निरंतर करने वाली थी। जब तक कृष्ण पति के रूप में नहीं मिलते तब तक पूजा तो चलती ही रहती, परंतु भगवान की कृपा से स्वल्पे नैव काले न तासाम तत्फलम सुसिद्धम इत्यभि प्रायण आह। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल एक महीने में ही पूजा की संसिद्धि मिल गई उनको। इस प्रकार एक महीने तक गोप कुमारियों ने पूजा किया। ये नहीं समझना चाहिए कि एक महीने का ही संकल्प लेकर के बैठी थी, नहीं, अब वो तो निरंतर करने वाली थी। जब तक कृष्ण पति के रूप में नहीं मिलते तब तक पूजा तो चलती ही रहती, परंतु भगवान की कृपा से स्वल्पे नैव काले न तासाम तत्फलम सुसिद्धम इत्यभि प्रायण आह। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल एक महीने में ही पूजा की संसिद्धि मिल गई उनको। इतना जल्दी सिद्धि मिलना है, एक महीना क्या टाइम है। ध्रुव महाराज को 6 महीने तपस्या करनी पड़ी, पर गोप कुमारियों को केवल 1 महीना है। केवल 1 महीने तक कठिन व्रत करना पड़ा और कृष्ण मिल गए। एसम एवं मासम व्रतम चल, 1 महीने तक ही कुमार यह कृष्ण चेत सह। दुर्गा जी की शक्ति पर विश्वास था लेकिन मन प्रियतम श्याम सुंदर में ही लगा था, चिंतन रात दिन उनका ही होता था। वैसे वो अपने उपाय में थी मां को प्रसन्न करके और किसी भी तरह से इनकी कृपा से कृष्ण हमें पति मिल जाए विश्वास था, पर मन कृष्ण में ही लगा था। तो स्वल्पे नहीं व काले न तासम तत्फलम सुसिद्धम इति अभिप्रायण आह एवं इति मासम एकम मार्ग शीर्षम व्याप्य मासानम मार्ग शीर्ष अहम इति भगवत विभूति विभूतित्वेन व्रते कालस्य सद्गुण्यं दर्शितम्। अब देखिए व्रत में क्या क्या चीज चाहिए, एक तो काल चाहिए, तो काल सबसे श्रेष्ठ था और देश जमुना जी का किनारा ब्रज, तो देश की दृष्टि से भी सबसे सुंदर स्थान था कृष्ण को पति रूप में पाने का, माता दुर्गा की आराधना का। और उससे श्रेष्ठ देश क्या हो सकता है, एक तो ब्रज, उसमें भी परम पावनी कालिंदी जी का किनारा है जमुना जी, और काल अगहन का महीना सबसे श्रेष्ठ। ये काल का सद्गुण दिखाया गया, भद्र कालीन मंगल चंडी इति प्रसिद्धां कात्यायनी में वश्लेषण भद्रम उत्तमम कम सुखम तस्याली पंक्तिर जस्या सकाश। जब भद्र काली क्यों कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर भद्र काली का अर्थ करते हैं सनातन गोस्वामी जी, भद्रम उत्तमम, भद्र का अर्थ है उत्तम और क का अर्थ है सुख, उत्तम श्रेणी के सुख का समूह अली, अली मतलब पंक्ति, जिस माता दुर्गा जी से उत्तम सुखों की श्रेणियां मिलती हैं उनको भद्रकाली कहते हैं, भद्र क अली। उत्तम सुख की पंक्तियां मिलती हैं, सुखदेव गोस्वामी ये अर्थ कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण मिले तो इससे बड़ा सुख अब क्या हो सकता था। तो भद्रकालीन समान अर्च इति अर्च देवता सद्गुणियम दर्शित, अर्च देवता का सद्गुण बताया जा रहा है भद्रकाली, तो जिससे उत्तम श्रेणी का सुख समूह प्राप्त हो उसको भद्रकाली कहते हैं। माता दुर्गा जी की कृपा से कृष्ण मिले ये सबसे उत्तम सुख है, तो अच्छे देवता की पूजा की। सम्यक सम्यक नित्यम नियम रक्षा पूर्वक यथा विधि अनर्चु समान अर्चु का अर्थ सम्यक अनर्चु, ठीक तरह से पूजा की, नियम पालन में कोई ढिलाई नहीं की, एक महीने तक नियम पूर्वक नियम की रक्षा करते हुए ही माता दुर्गा की पूजा की। कृष्णे साक्षात सर्वेश्वरे चेतो जासाम इति तस्या समर्चने पी कृष्णार्चनम एव अभिप्रेतम। माता दुर्गा की पूजा कर रही थी गोप कुमारियां, पर मन कहां लगा था? साक्षात सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण में। इसके द्वारा ये भी पूजा, ये भी विधि बताई जा रही है कि चाहे पूजा किसी की भी करे, मन भगवान में रखना चाहिए, मन से किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं ये व मन आदर्श, तो एक प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा भी कृष्ण की पूजा ही मान ली गई। और यह भी प्रमाण है कि माता दुर्गा जी प्रसन्न हुई, पर आया कौन वर देने के लिए? स्वयं श्री कृष्ण आए। माता जी ने प्रकट होकर के कुछ नहीं कहा, वह दुर्गा जी की आराधना वास्तव में कृष्ण की आराधना थी, इसी से तो बल वर देने के लिए स्वयं कृष्ण आए। ये आगे के श्लोक में, आगे प्रसंग में बताया जाएगा। पूजा हुई दुर्गा जी की, आए श्री कृष्ण स्वयं भगवान वर देने के लिए, प्रकट वर दिए। आगामी शरद काल की रात्रियों में हमारे साथ तुम्हारा विहार होगा, मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हूं, इस तरह से भगवान ने स्पष्ट कहा। एक महीने की पूजा सफल हो गई। और अतएव अग्रे वरदानाय श्री कृष्णस्य एव आगमनम बक्ष्यति। यद्वा कृष्ण चेतस्त्वेन मनसः परम शुद्धि उक्ता। कृष्ण में जिसका मन लगा हुआ है पूरा पूरा, तो उसके मन की शुद्धि भी एक प्रकार से व्यक्त की जा रही है, परम शुद्ध मन। किंवा स्वतः एव कृष्ण चेतस्तः विशेषतः च भूयानंद सुतः पति इति भद्रकालीम समान अर्चित एवं व्रतस्य परम सद्गुण्य उक्तिया अचिरात सम्यक फल सिद्धि अभिप्रेता। तो कृष्ण में मन लगा, हमेशा कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, भूयानंद सुतः पति, विशेष करके दुर्गा जी की पूजा करते समय बार बार कहा करती थी, सोचा करती थी, तो और कृष्ण में मन समाविष्ट था। तो इससे ये सिद्ध हुआ, सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि व्रत बहुत अच्छा पूरा हुआ और इसीलिए सम्यक सिद्धि हुई। अथवा कृष्ण चेतसह का एक और अर्थ है। ये प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण इतने दुर्लभ है, मान लीजिए माता दुर्गा जी कहें कि बेटे कृष्ण बहुत दुर्लभ है, उनको पति रूप में पाना बहुत कठिन कार्य है, ऐसा क्यों कहती है? तो गोपियों ने, गोपियों की तरफ से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण चेत, उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वो दुर्लभ अदुर्लभ जोग या जोग का विचार ही नहीं कर रही थी। लालसा इतनी हावी थी उनके चित्त पर कि वे चाहती थी कि कृष्ण हमारे पति हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तुम योग्य पत्नी हो या नहीं हो, इसका विचार ही नहीं रहा। कृष्ण चेत सह विचार का उदय ही नहीं हुआ, कृष्ण इतने दुर्लभ हैं। ऐसा प्रेमार्थी उक्ति तत्त दाढ़े न व्रत संनिष्ठा बोधनार्थ। सुखदेव गोस्वामी इसलिए इन सब बातों का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां जो ये कह रहे थे कि नंद गोप सुतम देवी पति मे कृते नमः, तो यह प्रेम की आरती है, प्रेम की तड़प है, और इसी कारण से माता दुर्गा से कह रही हैं। पर इन सबके द्वारा यह सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि व्रत में उनकी बहुत निष्ठा थी और दुर्गा जी के चरणों में पूर्ण विश्वास था कि ये श्री कृष्ण को हमारा पति बना देंगे, और इसलिए व्रत की सन्निष्ठा का वर्णन इसमें किया गया है। नंद सूतः पति भूयादिति संकल्प्य इति शेषम। नंद महाराज के पुत्र हमारे पति बने, यही संकल्प करके वे पूजा कर रहे थे। इसीलिए यहां पूजा दो बार कही गई, पहले भी आपने सुना और इस श्लोक में फिर कहते हैं, भद्रकालीन समान अर्चित भूयानंद सुतः पति। पूजा भी चल रही थी लेकिन लालसा भूया नंद सुतह पति तो नंद गोप सुतम देवी पति पति में कुरते नमः वहां कह ही दिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मन में यही था कि भूया नंद सुतह पति, इसका अर्थ था जैसे भी हो कृष्ण हमको मिले, कृष्ण हमको मिले पति रूप में, बस पूजा का सार यही था। और जो कर सकता है, जो संसार में सबसे शक्तिशाली है, जिसकी शक्ति है उसी से आदमी पैर भी लगाएगा ना, तो अब माता दुर्गा से बढ़ करके कौन है, तो इसलिए उनके चरणों की आराधना कर रहे थे, माँ ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, इस तरह से पूजा कर रहे थे। अच्छा, श्रील सुखदेव गोस्वामी उत्कंठा में पूजा के प्रकार का वर्णन पहले कर दिए लेकिन फिर पूजा के मुख्यांग का वर्णन कर रहे हैं या पूर्वांग का। एक बार कह दिए कि ऐसे पूजा करती थी जैसे गंधमाला दे करके ये मंत्र जपती थी, ये मंत्र जपती थी, लेकिन पूजा का मुख्यांग अथवा पूर्वांग वे फिर कहने लगे, कथा कहने में क्रम भंग कर गए, भूल गए, तो उस पीछे की बात को फिर कह रहे हैं। उसस्युत्थाय गोत्रै स्वै अनन्या बद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर् जगुर्जान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। व्रतस्य मुख्यांगमाह अथवा पूर्वांगमाह उससि इति। श्रीपाद विश्वनाथ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि पूजा व्रत का पूर्वांग कर रहे हैं, पहले जो कहना चाहिए था उसको छोड़ दिए भावावेश में तो फिर कह रहे हैं। और श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं व्रतस्य मुख्यांगम आह, व्रत के मुख्य अंग को कह रहे हैं। न केवलम कृष्ण चेतस एव, सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं न केवलम कृष्ण चेतस एव किंतु तत्कीर्तन परा अपि इति अर्चन परम सद्गुण्यम। इसमें कृष्ण के कीर्तन की बात आई है, ऐसे है अनुवहम उससे उत्थाय स्वयं गोत्र ही अनन्या बद बाहव कुमार्य कालिंद्याम स्नातुम उच्च कृष्णम जगु। मुख्य था कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का गान मुख्य था, उसी को कह रहे हैं। ये अर्चन के परम सद्गुण को व्यक्त कर रहा है, केवल कृष्ण में मन ही नहीं लगा था, तत्कीर्तन परा तत्संकीर्तन परा थी, भगवान में मन लगे ये तो है ही पूजा, लेकिन और पूजा के गुण को बढ़ा देता है भगवान का संकीर्तन। तो न केवलम कृष्ण चेतस एव किंतु तत्संकीर्तन परा अपि इति अर्चन परम सद्गुण्यमेव आह। जद्वा तदर्चनस्य समग्र प्रकारे विज्ञाते अन्यैरपि कैश्चित् जनैस्तद्व्रतम् क्रियत इति निजकृपया श्री परीक्षित अभिप्रायम् चालक्ष्य तद्व्रतस्य मुख्यांगमाह उससि इति। सनातन गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी फिर से पूजा के अंगों को क्यों कह रहे हैं, तो कहते हैं तद अर्चनस्य समग्र प्रकारे विज्ञाते, ये पूजा का त्यायनी जी की सब प्रकार से पता चल जाएगी गोपियों गोप कुमारियों ने कैसे किया, तो अन्य रपि कैश्चित जनह तद व्रतम क्रियता, अन्य के द्वारा भी किया जा सकता है। तो महाराज परीक्षित के अभिप्राय को जान करके जरा इसको और विस्तार से कहिए। निज कृपया श्री परीक्षित अभिप्राय च आलक्ष्य तद व्रतस्य मुख्यांगम आह उससे इति। श्री सनातन अथवा प्रेमणा विस्मृतम अपि पुनः तासाम अनुराग परिपाटी मयम व्रत पूर्वांगम स्मरण स्मरण आह उससे इति। आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि एक बात जो क्रम से कह रहे थे उसको आप पूरा कर दिए तो फिर कह रहे हैं। श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं प्रेमणा विस्मृतम अपि पुनः तासाम अनुराग परिपाटी मयम। प्रेम में सुखदेव गोस्वामी भूल गए थे एक बात कहना, उसको फिर कह रहे हैं पूर्वांग। अनुअहम प्रतिदिनम उससी प्रत्युषे उत्थाय। गोप कुमारियां प्रतिदिन उषा काल में ही जग जाती थी। उत्थाय स्वयं गोत्र ही, गोत्र का अर्थ है नाम, और उनके नामों से अयि धन्य कुत्रासी किम इति विलंब से इति एवं आहुता किम व स्वयं वर्ग ही सह। अपने अपने वर्ग के साथ अथवा अपनी सखियों के साथ उनका नाम लेकर के पुकारती थी और रात में चलती थी भोर में। अनुन्या बद्ध बाहव अनुन्यम आबद्धा गृहीता बाहव पाणय जा भी परस्परम गृहित पाणय इत्यर्थ। कुमार जी हम कालिंद्याम जमुनायाम स्नातु जानत्य। तो सखियों का नाम लेकर के बुलाती थी, चलो चलो उठो। अनु अहम इति वा जोज्यम, स्नान करने के लिए जाती थी तो जाते समय उच्च कृष्णम जगु, उच्च स्वर से कृष्ण के विषय में गाती रहती थी। कृष्ण का सौंदर्य या कृष्ण की कोई ब्रज विषयक लीला, कृष्ण की लीलाएं भी प्रसिद्ध रहती थी, ब्रज में फैली रहती थी, तो लीलाएं गाती थी, नाम गाती थी, गुण गाती थी, एक दूसरे से बाह मिला करके चलती थी। जमुना जी थोड़े दूर पड़ती थी तो वहां गांव से चल करके जमुना जी तक जाती थी, गाती रहती थी, स्नान करते समय भी गाती रहती थी। प्रत्युषे एवं उत्थाय इति दूरे श्री जमुनायाम सूर्योदयात प्राग एवं स्नानार्थम स्वगोत्र ही अनुन्यम तत्र नाम भी आहूय इत्यर्थ। अनुन्यम बद्धा दृढ़ गृहीता बाहव जाभीता। रात्रि के शेष में अभी अंधकार रहता था, पथ में अस्खलन का भय रहता था, अथवा कृष्ण संकीर्तन के प्रेम महामोह में गिरने की संभावना रहती थी, प्रेम से शरीर विशुद्ध हो जाता था, आनंद की मूर्छा आ सकती थी, तो इसलिए अनुन्य अनुन्या बद्ध बाहव एक दूसरे को पकड़ करके चलती थी गाते हुए, अथवा अनुन्य स्नेह विशेषाद्वा, यह एक दूसरे के स्नेह से एक दूसरे का बाह पकड़ करके चलती थी। एवं अनुन्य स्नेह न तद सम्य तद तद व्रत सम्यकत्व में वह दर्शित। इसके द्वारा भी सुखदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं कि इन सखियों में कुमारियों में इतना प्रेम था परस्पर, तो यह भी व्रत के सद्गुण में एक कारण है व्रत सफल होने में। उच्च ही थी सर्वासाम एकत्र सम्मेलनार्थम गानावेश विशेषण वा, उच्च स्वर से गाती थी सखियों को एक साथ करने के लिए, अथवा गान के आवेश विशेष से उच्च स्वर से गाती थी। नित्यम कालिंद्याम स्नातुम इति, एक बार कह चुके कि कालिंदी के जल में स्नान करती थी, तो फिर कह रहे नित्यम कालिंद्याम स्नातुम इति पुनः अनुवाद तत् स्नानस्य तत् प्राशस्त्य बोधनार्थ। कालिंदी में स्नान करने के लिए जाती थी, एक बार कह दिए तो फिर क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि जमुना में स्नान करना बहुत अच्छा है, यह कहने के लिए दो बार कह रहे हैं। ये भाव है सुखदेव गोस्वामी का। इसमें मुख्य काम है कृष्णम जगु, कालिंदी में स्नान करने के लिए जाती थी, कृष्ण का कीर्तन करती थी, गान करती थी, यही है पूजा का मुख्य अंग। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं चल सखी हरि कीर्तन गावे देवी के द्वारवा, देवी के द्वार पर चाहे शिव जी का मंदिर हो कुछ भी हो, कीर्तन क्या गाना है कृष्ण का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी किसी के पास जाना हो किसी मंदिर में, पर कीर्तन कृष्ण का होना चाहिए और चित भी कृष्ण में, कृष्ण चेतसह और उच्च कृष्णम जगु, गाते हुए जाते थे गोपी गोपी। इस तरह से पूरे महीने भर किया इन्होंने कि अब इनके व्रत की सिद्धि की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। नद्यः कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वांसांसि कृष्णं गायन्तो विजर्हुः सलिले मुदा। कदाचित किसी समय श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि व्रत पूर्ण दिन है। यह व्रत पूर्ण किस दिन हुआ था? या तो द्वादशी को, नहीं तो पूर्णिमा को, जैसा वैष्णव में परंपरा है कि व्रत की पूर्ति द्वादशी को भी मानते हैं अथवा पूर्णिमा को भी। तो पहले द्वादशी से चालू किए होंगे तो द्वादशी को पूरा किया था, अथवा पूर्णिमा से चालू किए होंगे तो पूर्णिमा तक। तो कदाचित का अर्थ है तन मासांते, अगहन महीने के अंत में व्रत पूर्ण दिने पौर्णमास्याम वा आगत्य श्री गोप कुमारियां आकर के नद्यः तीरे वासांसि पूर्ववत् निक्षिप्य। नदी के तीर पर, जमुना जी के तीर पर अपने वस्त्रों को पूर्ववत् निक्षिप्य, पहले जैसे रख देती थी, रख देती थी कोई सजा करके नहीं, इतना आवेश कृष्ण के गीत में रहता था। उनको स्नान करना था तो किसी तरह शरीर के स्वभाव से वस्त्र को खोल करके और फेंकती थी, ये भी ध्यान नहीं रखती थी कहां पर हम वस्त्र को रखी हैं। आवेश तो केवल प्रियतम श्याम सुंदर का था, उनका ही चिंतन, उनके चाल, उनकी ढाल, उनकी बांसुरी वादन या नुपुर ध्वनि मुस्कान आदि में ही चित्त लगा रहता था। इसलिए अपने वस्त्र को, ऊपर के वस्त्र को, नीचे के वस्त्र को खोल करके और फेंक देती थी। निक्षिप्य का अर्थ फेंक देना, पूर्ववत निक्षिप्य से सिद्ध हुआ कि प्रारंभ से ही एक महीने तक नग्न स्नान ही किया था गोप कुमारियों ने। तो तीरे वासांसी वस्त्राणि पूर्ववत निक्षिप्य कृष्णं गायन्त्यः, कृष्ण गुणगानं कुर्वन्त्यः सलिले मुदा विजर्हुः। और उस शीतल जल में भी आनंद के साथ विहार कर रही थी। यह स्नान का वर्णन नहीं है, विहार का वर्णन। अगहन के महीने में, वो भी पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बहुत ठंडा होता है, उस दिन जल में विहार कर रही है मुदा हर्ष के साथ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं क्योंकि एक महीने तक निर्विघ्न व्रत हुआ था तो बहुत खुश थी, कोई बाधा नहीं आई, कोई स्वजन का, किसी का, किसी भी प्रकार का, कोई प्राकृतिक या सामाजिक कोई बाधा नहीं आई। माता दुर्गा जी की पूजा में सफल हुई एक महीने तक की, इसलिए स्नान जो कर रही थी तो बहुत आनंद से कर रही थी। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि एक बार वे आई, वस्त्र को पूर्ववत रख दिया, स्नान किया, स्नान करके दुर्गा जी की पूजा की, और जब पूजा कर ली, महीने का अंतिम दिन था तो उनको बहुत खुशी हुई, तो पुनः फिर नग्न स्नान करने लगे, विहार करने लगे, व्रत के समाप्ति के खुशी के कारण। अथवा कृष्ण का कीर्तन गाने में, कृष्ण का गीत गाने में इतना आनंद हो रहा था कि उस आनंद में जमुना जी के शीतल जल के स्पर्श का अनुभव ही नहीं हो रहा था कि ठंडा है क्या है, आनंद आ रहा था, उस आनंद में गा रहे थे। कदाचित मार्गान्ते द्वादश्याम पौर्णमास्याम वा पूर्वत इति अनेन सदैव नग्नतया स्नान स्नानादि बोध्यते मुदा विजर्हु तत्र हेतु कृष्णम परमानंद घन मूर्ति परम चित्ताकर्षकम वा गायन्ते। क्यों आनंद से गा रहे थे? क्यों कृष्ण को गा रहे थे, जो परम आनंद घन मूर्ति है या जो परम आकर्षक है। तद गाने न हेमंत मध्य सुशीतल उदके श्री कालिंदी प्रवाहे अपि सीतादि बाधा भावत। कालिंदी के शीतल जल में भी शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्वा मुदा इति समग्र मासम निर्विघ्नतया व्रता चरणात् अतएव कृष्णम गायन्त्यो विजयः। पूर्वदेव गानम कृत्वा तेन गानेन मत्ता विस्मृतात्मानः। श्रीपद बल्भाचार्य जी कहते हैं भगवान के गीत में मत्त थी और विस्मृत आत्माना अपने को पूर्ण पूर्ण विस्मृत हो गई थी। स्वपरिहितानि वस्त्राणि तीरे निक्षिप्य भगवता सह जल क्रीड़ार्थन एवं प्रविष्ट। यही भाव हो रहा था कि हम कृष्ण के साथ ही जल विहार करेंगे। कृष्ण में चित इतना लगा हुआ था कि उनको ऐसा ही भाव हो रहा था कृष्ण स्वयं ही जमुना में हैं, उनके साथ हम जल क्रीड़ा कर रही हैं, कृष्ण पर पानी उछाल रही हैं। ये भाव द्वारा इसी आवेश में वे स्नान कर रहे थे। स्नाने मौन वस्त्र परित्यागो दोष द्वय क्रीड़ा च नियमस्था नाम देह विस्मरण समुदाय इत्यादि ने सोचित। ये स्नान में मौन रखना चाहिए और वस्त्र त्याग नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन करके और मौन रहकर स्नान करना चाहिए। लेकिन गोपियों में दोनों दोष बताया गया, गोप कुमारियों में मौन भी नहीं है, ये गा रही है और वस्त्र भी त्याग दिया है और तीर्थ में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, यह भी एक दोष है। पर क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुदा इतना आनंद है कि उसके द्वारा देह का विस्मरण है और जब देह का ही विस्मरण है तो नियम का स्मरण कोई कहां से करे। तो खूब गा रही है, एक दूसरे पर जल उछाल रही है, विहार कर रही है, बिजरहु शब्द है शीतल जल में। ये लिखते हैं कि उनको ऐसा भाव है कि हम प्रियतम श्याम सुंदर के साथ ही जल विहार कर रहे हैं। इस तरह से व्रत के अंतिम दिन जल विहार कर रही थी और उसी समय भगवान अपने छोटे छोटे चार सखाओं के साथ आए। वो छोटे छोटे चार बच्चे थे जिनके प्रसिद्ध सखा में नहीं थे। वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं प्राय वे बिना वस्त्र के ही वो बच्चे गाय चराने चले जाते थे कृष्ण के साथ रहने के लिए। मना किया था मत चलो, लेकिन पीछे से चलते थे तो कोई कोई कंधे पर टांग लेते थे। तीन बरस चार बरस के बच्चे थे, पांच बरस के, तो उनको अब वो कृष्ण के बिना नहीं रह पाते थे, इसीलिए दूसरे गोप लोग उनको कभी कंधे पर टांगते थे, कभी कुछ जाते थे गाय चरा। उस दिन श्री कृष्ण उन्हीं चारों के लिए छोटे छोटे लड़के थे और जा करके गोप कुमारियों के चीर का हरण किए, केवल कृपा करके उनके व्रत को पूरा करने के लिए और अपने आत्मद अपना दान देने के लिए कि मैं पति रूप में हूं, प्राप्त हूं, तुमने बहुत अच्छा व्रत किया। तो वो कथा शाम के सिटी में की जाएगी, भगवान कैसे पहुंचे और कैसे बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।